विवेश में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। पिछले अंक में आपने सुना श्री प्रकाश शुक्ल के अपराधों की कहानी, किस तरह उसने वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या की और किस तरह उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने के लिए 5 करोड़ रुपए की सुपारी ली और शुक्ल को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। अब आगे सितंबर 1998 में एसटीएफ के हाथों एक बड़ा सुराग मिला। एसटीएफ के प्रमुख अजय राज शर्मा अपने लखनऊ निवास में रात का भोजन कर रहे थे, तभी उनके फोन की घंटी बजी।
हमारे एक दोस्त थे जो लखनऊ मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उनको मैं अच्छी तरह जानता था। तो उनके पास ये गए होटलियर, उनके दोस्त थे, और लगे रोने। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप रो क्यों रहे इतना। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी भाषा सुनी ही नहीं आज तक जो मैंने अभी सुनी है, और जो मुझे धमकियां दी गई हैं ऐसी चीज। अच्छा, वो शरीफ आदमी, उनसे कोई लेना देना नहीं किसी गाली गलौज धमकी से। तो मैं घबरा गया हूँ, मैं समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। डॉक्टर साहब ने कहा मैं जो ADG लॉ एंड ऑर्डर हैं उनको जानता हूँ, मैं अभी लेके चल रहा हूँ उनके घर पे। तो उन्होंने मेरे से कहा मैं आ जाऊँ। मैंने कहा कि आज सुबह को आए तो ज़्यादा अच्छा, तो रात हो रही है। नहीं, मुझे अभी बात आपसे करनी है। मैंने ठीक, आ गए, बात हुई। उन्होंने कहा साहब, उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने फ़ोन उठाया और लगा माँ बहन की गाली देने मुझे, और कहने लगे साले तेरे इतनी बिल्डिंग बना ली और हमें भूल गया, हमारा कोई हिस्सा नहीं उसमें। उसने कहा कि आप कौन है। कहने लगे क्या मेरा नाम नहीं सुना तेने, आके समझाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तो उसने बताया मैं श्री प्रकाश बोल रहा हूँ, और देखो जितना तुमने कमाया है उसका 10% जोड़ लो और 2-3 दिन में मेरे पास पहुंचा दो। तो उसने बहुत बिल्डिंग बनाई थी, उसका 10% भी बहुत बैठता। उसने कहा मैं कल को फिर फोन करूंगा। तो मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा हो गया कि कल को आपसे बात करेगा वो।
अजय राज शर्मा ने होटल के मालिक से अनुरोध किया कि अगले दिन जब श्री प्रकाश शुक्ल का फोन आए तो वो बातचीत को लंबा करने की कोशिश करें।
देखिए साहब, ज्यादा से ज्यादा मैं तुमसे 1 मिनट ही बात करना चाहता। मैंने कहा मगर आपको कल करना पड़ेगा। तो हमने कहा वो मान लीजिए आपसे कहे कि आपको 1 करोड़ रुपया देना है, तो आप कहिए मैं नहीं दे सकता, मेरे पास है ही नहीं इतना। तो करते करते उससे बार्गेनिंग करिए, 80 लाख 70 लाख करते हुए और टाइम देते जाइए। करते करते बहरहाल हमको ये मालूम हो गया कि ये नंबर इसका ये है। तो उसने दिल्ली वर्ड यूज कर दिया कि आज मैं दिल्ली में हूँ या कुछ इस तरह की बात, और मैं परसों को आऊँगा तो रुपया तैयार रखना। तो हमने तुरंत यहाँ के सीनियर जो टेलीफोन के ऑफिसर्स हैं उनको ताल्लुक किया। हमने कहा इमरजेंसी है, ये नंबर है, इसको आप ज़रा सा ट्रेस आउट करिए कि कहाँ से बोल रहा है। तो उसने बताया कि ये वसंत कुंज के पास कोई जगह है जहाँ से बोल रहा है। तो मैंने तुरंत अरुण कुमार से कहा कि आप लीजिए अपनी इसकी टीम जो श्री प्रकाश शुक्ला वाली है, और अभी आप रवाना हो दिल्ली के लिए।
अरुण कुमार तुरंत दिल्ली पहुंचे और उनकी टीम भी अपनी टाटा सुमो से दिल्ली पहुंच गई। उन्होंने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से संपर्क कर उसकी मदद ली और शुक्ला के फोन को फिर से सुना जाने लगा। एसटीएफ के सदस्य और इस समय बरेली रेंज के DIG राजेश पांडे बताते हैं।
गोरखपुर की एक लड़की से उसकी बात हो रही थी, उसका फोन गोरखपुर में उसके नंबर पे है। जैसे पता लगा कि उस लड़की से उसका नंबर लैंडलाइन का वहाँ के DIG ने लगवा रखा, तो उन्होंने बताया सब इस नंबर से फोन आया। इसी बीच में आरिफ बिल्डर्स, उनको उसने फोन करना शुरू किया, वो घबरा गए। पहले तो ये हुआ कि साहब ये वो आदमी है कि दूसरे लोग फोन कर देते हैं श्री प्रकाश के नाम से। फिर चूंकि मैं नंबर सुनता था, नंबर लगाता था, ये सारा काम टेक्निकली मैं करता था, तो मुझे फिर भेजा गया उनके पास कि आप चेक करके बताइए। खैर वो श्री प्रकाश ही था, कंफर्म हो गया। उस नंबर की भी लोकेशन दिल्ली आई, हम लोग सब लोग पहुंच गए दिल्ली में ही, वहां जहां आजाद मंडी है उसी के पास एक छोटे से होटल में मैं, अरुण कुमार साहब, पूरी टीम 12-13 लोग थे, सब लोग वहीं पर टिक गए। इसी बीच नवरात्र आ गया, 21 तारीख को नवरात्र का दूसरा दिन। मैं नवरात्र के 9 दिन व्रत रहता हूँ, और पहले दिन और लास्ट डे अरुण कुमार साहब भी रहते हैं, बहुत ही धार्मिक आदमी है। पहले दिन शाम को उसने फोन किया, हरिशंकर तिवारी जी। हम लोगों का इंटरेस्ट केवल नंबर में था, बहुत धमकाया उनको, बहुत वो गिड़गिड़ाए। तो वो नंबर ट्रैक होते होते ग्रेटर कैलाश के PCO का आया, तो वहां से ग्रेटर कैलाश बहुत दूर था और कॉल भी बहुत लंबी नहीं थी, 10-12 मिनट की थी, हम पहुंच नहीं सकते थे। फिर बातचीत में ये पता लगा कि ये 22 तारीख को इसे जाना है, इसने एयरलाइन का टिकट बुक करा रखा है।
22 सितंबर 1998 की सुबह 3:30 बजे एसटीएफ के लोग दिल्ली हवाई अड्डे पर पोजीशन लेकर श्री प्रकाश शुक्ल का इंतजार करने लगे। सुबह 5:45 पर फ्लाइट को टेक ऑफ करना था।
तो हमने कहा इससे अच्छी तो इन्फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो एयरपोर्ट के अंदर एंटर करेगा, वहाँ उसकी फिस्किंग होगी, कोई लेके वेपन जा नहीं सकता अंदर, तो निहत्ता पकड़ लेंगे उसको। तो हमने अपने आदमी और उन्होंने अपने आदमी एयरपोर्ट पुलिस से बात करके सब सादे में लगा दिए। सब लोग अपनी जगह पे 5 बजे नियुक्त हो गए। लोग आ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि श्री प्रकाश शुक्ला की शक्ल का सूरत का तो आदमी कोई अभी तक गया नहीं है, और सब फ्लाइट भर गई। कहने लगे साहब सिक्योरिटी चेक सबका हो गया है और फ्लाइट जाने के लिए तैयार है, उसमें एक जगह खाली है, बाकी सारे पैसेंजर आ गए। हमने कहा जल्दी से पता करो वो जगह जो खाली है वो किस पैसेंजर की है। तो उन्होंने जो नाम बताया वो श्री प्रकाश शुक्ला का नहीं था, वो तो किसी और का था, क्योंकि उसने फर्जी नाम से लिया। बहरहाल फ्लाइट चली गई और श्री प्रकाश शुक्ला गया नहीं। तो हमने कहा फिर वॉच करो, फिर ट्रैक करो। फिर से बात किया अपने गर्लफ्रेंड से गोरखपुर की, भाई वो तो फ्लाइट ही चली गई, मैं रात में कुछ किसी से जरूरी बात करनी थी करता रह गया और मैं सो गया, और मुझे 5 बजे सुबह पहुंचना था एयरपोर्ट, मैं पहुंच नहीं पाया। उन्होंने कहा नहीं मैं आप कल की फ्लाइट से आऊंगा, आज नहीं कल को आऊंगा, आज मेरा कुछ काम है गाजियाबाद में।
तय हुआ कि श्री प्रकाश शुक्ल के फोन को फिर सुना जाएगा। उसने होटल के मालिक आरिफ को लखनऊ फोन मिलाया।
फिर उसकी बात उस होटेलियर से शुरू हुई, यार एक मिनट। एक्चुअली वो बात नहीं करते थे, वो डर गए थे, उनका साहब हम तो बात नहीं कर पाएंगे। तो फजलुर रहमान करके हमारा हेड कांस्टेबल था, तो सारे फोन वो अटेंड करता था और श्री प्रकाश को ये लगता था कि ये अलग में बात कर रहे हैं। फिर कॉल आई लखनऊ हेडक्वार्टर में, हमारे साथी डीएसपी थे उमेश सिंह, उन्होंने बताया इस नंबर से, नंबर दोनों एक ही हो गए। और उनको मां साहब ने कहा, उनसे हम लोगों ने पूछा कि सर ऐसा है एक कॉल की है दूसरी कर रहा है, ये हो सकता है और भी कॉल करे, तो एक मिनट जाके हम लोग उसे पीसी वाले से पूछ तो सकते ही हैं क्या शक्ल थी। पहले हल्ला ये था कि साहब उसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है, फिर हल्ला ये था कि साहब फ्रेंच कट दाढ़ी बनवा ली है, फिर ये हल्ला था कि बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी है, काला चश्मा लगा लेता है, पहचान में नहीं आता है। तो इस गलत से हम लोग वहां से अपने होटल से सीधे निकले उस एड्रेस के लिए जहां वो पीसीओ था। हम लोग पहुंच गए ग्रेटर कैलाश 2 में, बहुत ही पॉश लोकेलिटी में वो पीसीओ था। वहां पहुंचने पे ये पता लगा कि अभी अभी निकला है, उन्होंने पूरी शक्ल सूरत हुलिया ये सब बताया। उसने बताया कि साहब ब्लू रंग की सीलो थी, इस पे चढ़ के इस तरफ गए हैं ये लोग। तो उनको वहां साहब से पूछा गया, उनका मैं भी आ रहा हूँ जिस तरफ बता रहे हैं, एक बार ट्राई करो कि हो सकता है नीले रंग की सीलो आपको दिख जाए। थोड़ा दूर आगे जाने पे क्रॉसिंग पे हम लोग खड़े हुए, आगे हम लोगों को वो दिखाई पड़ गई।
शुक्ला की नीली सीएलओ कार का पीछा किया जाने लगा। उसकी कार का नंबर था HR26G73। असल में ये नंबर नकली था और एक स्कूटर को अलॉट किया गया था। श्री प्रकाश खुद कार चला रहा था, उसके साथ उसके साथी अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी बैठे हुए थे। जब शुक्ल की कार NH24 पर चलती हुई इंदिरापुरम के पास पहुंची तो उसे आभास मिल गया कि उसका पीछा किया जा रहा है। एसटीएफ के एसएसपी और इस समय रेलवे पुलिस के महानिदेशक अरुण कुमार याद करते हैं।
हमारी टीम जो है 2-3 टीमें गाड़ियों में इसके पीछे थी, और कुछ हम लोगों ने इस ढंग का किया कि उसने अब गाड़ी को उस तरफ मोड़ लिया, और कुछ दूर आगे जाने के बाद इसको ये शायद एहसास हुआ कि कुछ गाड़ियां पीछा कर रही हैं हमारी। और एसटीएफ का गठन के बारे में तो ये सुन ही चुका था, जानता भी था, कुछ लोगों को पहचानता भी था। इसको दिखाने के लिए जो पीछे गाड़ी थी जो पीछा कर रही थी वो आगे बढ़ गई ताकि उसको ये न भ्रम हो, और फिर ये जो है वो उसने दाहिने मोड़ ली कौसाम्बी की तरफ। तब तक हमारी 2 गाड़ियां जो और दूसरी तरफ इस पे वॉच कर रही थी वो दोनों गाड़ियां कौसाम्बी की तरफ गई।
अचानक श्री प्रकाश शुक्ल ने अपनी गाड़ी सड़क से नीचे कच्चे में उतार दी।
उसे ऐसा लगा कि हो सकता है ये रोड मिल जाए हमें यहाँ पे भीतर, जबकि वो जंगल था। और जैसे ही वो उसके भीतर उतरा है कच्चे पे, वैसे ही हम लोगों ने आगे से उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया है, और हम जानते थे कि ये बैक करेगा क्योंकि आगे रास्ता नहीं है। तो वो बैक किया, फिर उसने की आदत थी, उसका कहना था कि जो पहली गोली मार ले वही बादशाह है। उसके बाद फिर शुरू हुआ और फिर हम लोगों ने उसको न्यूट्रलाइज कर लिया तीनों को।
आपने किसी स्टेज पे ये नहीं सोचा कि इसको जिंदा पकड़ा जाए?
हर स्टेज पे हम लोगों ने सोचा, बहुत ढेर सारे क्लेरिफिकेशन करने थे हम लोग, और हम इसे जिंदा ही पकड़ना चाहते थे। लेकिन उस समय तो हीट ऑफ द मोमेंट में कोई बात न समझने वाली थी और न कोई बात समझाने वाली थी।
मैंने राजेश पांडे से जोर देकर पूछा कि क्या श्री प्रकाश शुक्ल ने उनका कड़ा प्रतिरोध किया? उसके आखिरी क्षण कैसे थे?
वो फायर कर रहा था, भाग रहा था, हम लोग पीछे पीछे थे। हम लोग बिल्कुल फ्रंट रनर थे, मैं, सत्येंद्रवीर सिंह साहब और इंस्पेक्टर है हमारा अविनाश मिश्रा, हम भी फायर कर रहे थे। हमें आइडिया नहीं था कि आज इसके पास एके नहीं है। हम डर रहे थे कि ऐसा न हो कि ये रिटेलिएट करे, हालांकि हम भी AK-47 लिए हुए थे, 9mm के 2-2 पिस्टल सब लोगों के पास थे। फिर वो गिरा है और फिर उसने वो जैसे रहम की भीख कि छोड़ दीजिए गोलियां लगी थी, फिर भी वो छोड़ दीजिए की बात कर रहा था। नजदीक गए हैं, जीन्स की पैंट पहने हुए था, एक टी शर्ट पहने हुए था, बढ़िया स्पोर्ट शू पहने हुए था, बहुत ही अच्छी कद काठी। उस समय ताजी ताजी बुलेट हिट्स थी तो ये अंदाज नहीं लग रहा था कहाँ कहाँ को बुलेट लगी हैं। एक दो मिनट उसकी आवाज निकली होगी, उसके बाद फिर ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे ये ठंडा हो रहा है।
जैसे ही ये खबर सार्वजनिक हुई, प्रसार भारती के उस समय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव रतन शाह ने श्री प्रकाश शुक्ल के शव को देखने की इच्छा प्रकट की।
राजीव रतन शाह साहब उस समय प्रमुख सचिव गृह थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम थी यूपी में, और वो बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे कल्याण सिंह साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये समझाने के लिए कि एक अलग से यूनिट बनाइए जो सिर्फ और सिर्फ यही काम करे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पे वीआईपी का भी लोड रहता है, ट्रैफिक का भी लोड रहता है, फंक्शन का भी लोड रहता है, वीआईपी मूवमेंट लखनऊ में रोज होता है, उसका ये लोग नहीं कर पाएंगे। हुआ ये था कि वो न्यूयॉर्क गए थे तो वो एनवाईपीडी के हेडक्वार्टर भी गए थे। एक सिंगल पन्ने पे A4 की एक शीट पे हरे रंग की कलम से उन्होंने छोटी छोटी चीजें लिखी थी कि आपने न्यूयॉर्क से माफिया कैसे खत्म की है। तो उन्होंने अपना बताया था हमारी एक यूनिट बनी और ऐसा हुआ, तो उन्होंने कागज पे लिख रखा था और लौट के उन्होंने वही माननीय मुख्यमंत्री जी को कन्विंस किया कि साहब एक यूनिट बना दीजिए। दूसरा हुआ था एक वहां पे सोलोमन एलन सोलोमन करके बड़ी मेडिसिन की कंपनी थी, उसके जो ओनर थे के रस्तोगी और उनका बेटा था कुणाल रस्तोगी, तो इस के रस्तोगी को गोली मार दी। सुबह मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे और उसके लड़के को किडनैप कर लिया इन लोगों ने। बहुत हाहाकार मचा था और ये फैमिली किसी तरह से राजीव रतन शाह साहब की जानने वाली थी। उनको ये बात बहुत चुभ गई कि एक आदमी पूरे सिस्टम पे भारी पड़ रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। इस बीच में राजीव रतन शाह साहब ट्रांसफर हो गए और वो प्रसार भारती के निदेशक हो गए दिल्ली में। लेकिन जैसे ही टीवी पे और सब जगह उन्होंने देखा कि वो मारा गया, उन्होंने अरुण कुमार साहब से कॉन्टेक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये बताइए इसकी बॉडी को मैं कहाँ देख सकता हूँ। तो उनका साहब मॉर्चरी में है, बोले आई वुड लाइक टू सी हिज बॉडी विद माई वाइफ। एक फोटोग्राफ और कहीं कहीं आपको नेट पे मिलेगी, वो मॉर्चरी की है। तो फिर ये गए, लाइट नहीं थी वहां पे, टॉर्च जला के दो मिनट देखा और देख के चले गए।
श्री प्रकाश शुक्ल के एनकाउंटर में मारे जाने की खबर तुरंत मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को दी गई। उस समय वो विधानसभा में भाषण दे रहे थे।
मारने के बाद जब चीफ मिनिस्टर को बताया अरुण कुमार ने कि साहब हमें मार दिया है, सही बात है, वो सेशन चल रहा था असेंबली का उस वक्त, वो वहां थे, तो उन्होंने कहा कि आर यू श्योर कि आपने मार दिया, मैं कहीं अनाउंस कर दूं और गलत हो जाए। उन्होंने कहा नहीं साहब, हम आमने सामने हैं, उसकी डेड बॉडी हमारे सामने पड़ी है, तो हमें कोई शक नहीं है। तो उन्होंने फिर अनाउंस किया असेंबली में, बड़ी तालियां बजी और फिर वो खुद आए एयरपोर्ट इनको लेने के लिए, जो टीम गई यहां से वापस, और सबको इनाम दिया अपने हाथ से, एक एक लाख रुपया।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।